पिछले क्लास में हमने सुना था कि किस प्रकार से श्रील हरिदास ठाकुर जो एक वेश्या का उद्धार करते हैं हा? और फिर उसका नाम क्या पड़ता है, क्यों लक्ष्य पूर्वक ध्यान पूर्वक करते थे, मतलब लक्ष्य 3 लाख नामों का उच्चारण करते थे। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की जो महिमा है वो बढ़ने लगी और उस स्थान को जहाँ बेनापोल, जिस स्थान में हरिदास ठाकुर ने अपनी जो कृपा है वो लक्ष्य हीरा नामक उस वेश्या को प्रदान की थी और उसको निरंतर भगवान के नामों का उच्चारण करने में और तुलसी की सेवा करने में हरिदास ठाकुर ने लगाया था और कहा था कि आचिरात पावे तुम्हें कृष्णेरा चरण, कि आचिरात मतलब ज्यादा लंबा ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही आपको कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी। तो हरिदास ठाकुर के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार वो जो वेश्या है वो भी हरे नाम का उच्चारण करती है और पूरी तरह से कृष्ण के शरणागत होती है और एक महान वैष्णवी बनती है जिसको हमने सुना था। तो फिर हरिदास ठाकुर उस वेश्या को इस प्रकार का उपदेश देकर आगे चांदपुर नामक स्थान में आते हैं बंगाल में ही। तो हरिदास ठाकुर का ये तो बांग्लादेश में थे, बेनापुल जो स्थान है अभी बांग्लादेश में है, लेकिन अभी वो चांदपुर नाम के स्थान में आते हैं तो आके वो बलराम आचार्य के घर में रहते हैं। तो ये जो बलराम आचार्य हैं वो जो जमींदार थे हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार, तो गोवर्धन मुजुमदार रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता थे और हिरण्य मुजुमदार उनके अंकल थे रघुनाथ दास गोस्वामी के। तो ये जो बलराम आचार्य हैं जिनके पास हरिदास ठाकुर आते हैं, ये बलराम आचार्य उनके रघुनाथ दास गोस्वामी के घर में पुरोहित थे, प्रिस्ट। तो फिर बलराम आचार्य का जो प्रीति है वो हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत अधिक प्रगाढ़ था और ये हरिदास ठाकुर ने उनके लिए एक निर्जन स्थान में कुटिया भी बना के दे दी और जो भोजन करने के लिए हरिदास ठाकुर बलराम आचार्य के घर आते थे या कई बार मांग कर भोजन किया करते थे और निरंतर भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए और बलराम आचार्य के साथ अपना जो समय है वो कृष्ण कथा में गवाते थे मीन्स यूज करते थे। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर यहाँ आते हैं। तो उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी एक बालक ही थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी यह हरिदास ठाकुर को देखकर बहुत प्रभावित थे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय तो बालक थे, तो वैष्णव आचार्य कहते कि यही कारण बना कि वो आगे चलकर महान गोस्वामी बने कि हरिदास ठाकुर की उनके ऊपर कृपा हुई। हरिदास ठाकुर की कृपा से ही नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई। तो ये बालक थे रघुनाथ दास गोस्वामी, स्कूल से आने के बाद ये हरिदास ठाकुर के पास जाया करते थे और उनका दर्शन करते थे, उनकी कई प्रकार से सेवा करते थे और वो बालक होते हुए भी उनके हृदय में ये भावना आई थी कि ये हरिदास ठाकुर के पास कुछ ऐसी मूल्यवान चीज है। वो क्या है, कृष्ण प्रेम में हरिदास ठाकुर हमेशा मत्त रहते थे। तो ये बालक होते हुए भी उनके हृदय में उस चीज को प्राप्त करने की अभिलाषा जागृत हुई, बल्कि रघुनाथ दास गोस्वामी का जो जीवन है आगे चल के भी, क्योंकि उस समय उनके जो पिता और उनके जो अंकल थे वो करोड़पति थे, अब्जावधि रुपए उनके पास होते थे, कई हजार या लाखों क्वाइंस वो हर साल कलेक्ट करते थे टैक्स के रूप में। तो ये बहुत धनवान थे। कृष्णदास कविराज कहते हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य श्री अप्सरा सम, कहते उनका तुलना करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का, क्या ऐश्वर्य कैसे था स्वर्ग के राजा इंद्र के समान, बहुत अधिक धन फैसिलिटी सुविधाएं नौकर चाकर सब कुछ था। और उनकी पत्नी कैसे थी रघुनाथ दास गोस्वामी की, अप्सरा के समान, फिर भी उनका कोई आकर्षण नहीं था। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु के लिए मैड हो गए थे उनके मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए, इसलिए भागते थे। तो प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी भागते हैं महाप्रभु के आंदोलन को ज्वाइन करने के लिए, वैसे आजकल की युवक भी अपना घर जॉब सब कुछ छोड़ के भागते हैं इस्कॉन में ज्वाइन करने के लिए, बल्कि उनके पास सारी भौतिक सुविधाएं हैं। तो इस प्रकार से वो कहां करते थे श्रील प्रभुपाद। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर की कई प्रकार से सेवा की और उनके प्रति उनका आसक्ति उत्पन्न हुई। तो कपिल देव कहते हैं कि मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करोगे तो जो आध्यात्मिक जगत के जो डोर्स हैं वो आपके लिए खुले हो जाएंगे, लेकिन भौतिक चीजों के प्रति योषित, जो योषित है मीन्स भौतिक स्त्री है भौतिक चीजें हैं उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न करोगे तो कपिल देव कहते हैं नरक के दरवाजे खुले हो जाएंगे। तो ये भगवान के भक्तों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करना एक भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है और उनकी सेवा से वो जो आसक्ति है वो उत्पन्न होती है। जैसे हरे जो नारद थे दासी पुत्र, उनके जीवन में भी हम पढ़ते हैं और ऐसे कई आचार्यों के जीवन में इस बात का वर्णन आता है। तो एक दिन क्या हुआ कि ये जो बलराम आचार्य थे उन्होंने कहा हरिदास ठाकुर को कि आप, हरिदास ठाकुर के चरणों में उन्होंने निवेदन किया कि हम सब लोग इनके ऑफिस में, गोवर्धन मुजुमदार और हिरण्य मुजुमदार का जो ऑफिस था जहाँ कई लोग काम भी करते थे, वहाँ हम क्या करते हैं एकत्रित होते हैं और वहाँ आप चलिए और नाम कथा करिए। बल्कि हिरण्य मुजुमदार और इन्होंने कहा था, क्या नाम, गोवर्धन मुजुमदार ने उनको कहा था कि आप आइए, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने उनके जो ये पुरोहित थे बलराम आचार्य से हरिदास ठाकुर के गुणों के बारे में सुना था, इसलिए उनको हरिदास ठाकुर के प्रति बहुत आदर और सम्मान की भावना थी। और वो देखते थे कि हरिदास ठाकुर केवल बोलते नहीं है कि वो हरि नाम का उच्चारण करते हैं हर समय, 300,000 नाम जप करते हैं। तो इस प्रकार से इनके ऑफिस में कई पंडित और ब्राह्मणों के साथ ये सब बैठे हुए थे जहाँ चर्चा हो रही थी आध्यात्मिक विषयों पर। श्री हरिदास ठाकुर को उस सभा में उन्होंने इनवाइट किया था, हरिदास ठाकुर आते हैं और हरिदास ठाकुर वहाँ बैठते हैं उनकी सभा में और चर्चा चल रही थी भगवान के नाम की महिमा के बारे में, भगवत नाम की महिमा का वर्णन और डिस्कशन कर रहे थे, ग्रुप डिस्कशन हो रहा था उनका आपस में। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कह बोले नाम है ते हय पाप क्षय, तो कुछ लोग कहते थे कि नाम लेने से पाप क्षय हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। कह बोले नाम है ते जीवेर मोक्ष है, कि नाम लेने का फल क्या है, किसी जीव का मोक्ष हो जाएगा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी। या कोई कहते थे नाम का फल है पापों से मुक्त होना। तो हरिदास ठाकुर जब उस सभा में थे तो हरिदास ठाकुर ने तुरंत कहा, हरिदास कहे ना मेरे यही दुई फल नाय, कि चांटिंग इसलिए नहीं करते कि ये फल प्राप्त हो जाए। तो इतने नाम का ये फल नहीं है, क्या क्या दो फल नहीं है, लिबरेशन और पाप से मुक्ति हो जाना, पाप से रिएक्शन से मुक्त हो जाना, ये फल नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा नामेरा फल कृष्ण पदे प्रेम उपजाए, हरे नाम का फल क्या है, कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करता है। हाँ, तो ये हरिदास ठाकुर ने इस बात को कहा कि ये तो दो चीजें जो है ये तो बाय प्रोडक्ट है, अनुषांगिक है। हाँ, ये क्या है? बाय प्रोडक्ट है। हरे नाम कोई लेता है तो ये दो चीजें अपने आप ही प्रकट हो जाती है। हाँ, तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने कहा कि हरे नाम करने का ये मुख्य फल है। हाँ, मुख्य पते जीव पाय कृष्ण प्रेमधन। तो इस कलियुगा में ये जो हरे नाम का उच्चारण करना, इसको मुख्य पद कहा गया है। और कोई व्यक्ति इस मुख्य पद को पकड़ता है, हरे नाम को अपने जीवन में बहुत गंभीरता से, तो कहते मुख्य पते जीव पाय कृष्ण प्रेमधन। तो इस प्रकार से ये हरे नाम जो केवल उसका फल है कि कृष्ण प्रेम दे, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि मैं तो प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जब बनारस में चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि आप तो इतने बड़े सन्यासी हो, आप सन्यासी हो, सन्यासी को ये नाचना गाना भावुकता की तरह ये करना उचित नहीं है, रोड में जाके नाचना हरि नाम करना। जैसे आज हमारा हरि नाम है, नेहरू प्लेस की मार्केट में जाएंगे हम लोग और वहां सब लोगों के बीच में नाचेंगे गाएंगे, तो लोग भी ऐसे सोचते, ये लोग भावुक लोग हैं, रास्ते में आके नाचते गाते रहते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को भी प्रकाशानंद सरस्वती, जो सारे सन्यासियों के शिरोमणि थे, तो उन्होंने कहा कि आपको तो हमारे बीच में आकर या वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, क्या कर रहे हो आप नाचना गाना हरि नाम को लेना। तो उन्होंने कहा गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। हाँ, मेरे गुरु ने मुझे पहचान लिया कि मैं मूर्ख नंबर वन हूँ और उसने शासन मतलब आज्ञा दी। हाँ, क्या आज्ञा दी? कि तुम्हार नाही वेदांत अधिकार, वेदांत अध्ययन करने में तो आपका अधिकार नहीं है। हाँ, कृष्ण नाम कर सदा, कृष्ण नाम को सदा उच्चारण करो,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो उन्होंने कहा इस हरे नाम को उच्चारण करो और ये हरे नाम उच्चारण करने से पाय कृष्ण पदे प्रेम धन, कृष्ण के चरणों में प्रेम का जो धन है वो प्राप्त करोगे। तो कहते हैं कि मैंने तो गुरु की आज्ञा को पालन किया और मैं बैठ गया जप करने के लिए, और फिर जप करते करते देखा मुझ में तो परिवर्तन हो रहा है। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि कुछ हो रहा है मेरे शरीर में। हाँ, तो फिर मैंने एक दिन निर्णय लिया कि गुरु जी के पास जाता हूँ। और क्या गए अपने आध्यात्मिक गुरु के पास और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, किवा मंत्र दिला गोसाई, हे गोसाई हे गुरुदेव, ये कौन सा मंत्र आपने दिया मुझे? किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तार बल, और क्या शक्ति है इस मंत्र में, कितना अद्भुत शक्तिशाली है। जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। ये मंत्र ऐसा है कि ये पागल बना देता है। किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो ये है, ये फल है हरे नाम का उच्चारण करने का। इसलिए हरे नाम का जो गुणगान है वो शास्त्रों में बहुत अधिक है और सारे वेद उपनिषद सारे ग्रंथों का एक ट्री माना गया है और उसका फल क्या है? हरे नाम। तो लॉर्ड चैतन्य जब अपीयर हुए तो वो अपने साथ वो खुद माली बने, गार्डनर। अभी हमें कहा जाए माली का सेवा करो, नहीं करेंगे हम, लेकिन महाप्रभु कहते कि मैं खुद माली हूँ। और गार्डन ऑफ लव, उनका गार्डन कैसे है? प्रेम का गार्डन है, बगीचा। हाँ, गार्डन ऑफ लव। और कहते मैं गार्डनर हूँ और वहां ऐसे फ्रूट्स हैं, हाँ, कि पेट भरे खाए। हाँ, एक फल खाएगा तो आपका पेट भर जाएगा और आप फल खाते ही पागल की तरह नाचने लगोगे गाने लगोगे। तो कहते मैं अकेला गार्डनर इतने फल खा रहा हूँ और बांट रहा हूँ, मुझे और लोग चाहिए। हाँ, मतलब प्रीचर चाहिए और प्रीचर चाहिए। तो फ्रूट क्या है? होली नेम। महाप्रभु ने कहा कि मैं खुद तो खा ही रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, लेकिन बांट रहा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं बांट पा रहा हूँ। हाँ, वो क्या कहते, और मुझे गार्डनर्स चाहिए, माली चाहिए जो खुद भी खाए और बांटे आगे चलकर। इस प्रकार से ये जो प्रेम फल है हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसका एक ही उद्देश्य है कि वो कृष्ण के प्रति हमारा जो प्रेम है वो जागृत करता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय श्रवनादि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो हरि नाम को हम स्वीकार करते हैं तो हमारे हृदय को शुद्ध बना देता है। चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा सुकम दिया है तो उसके पहले श्लोक में सेवन रिजल्ट्स भगवान ने बताए हैं चैंटिंग के। तो पहला रिजल्ट क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, कि चित्त रूपी दर्पण को मार्जन होता है, क्लीन होता है। भव महादावाग्नि निर्वापनम, हाँ ये भव सागर के दावाग्नि से मुक्तता होती है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने भी इसी बात को कहा कि नामेरा फल कृष्ण पदे प्रेम उपजे। नाम लेने का फल क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। ये नहीं कि हम नाम जब क्यों कर रहे, पाप मेरे कट जाए, ये उद्देश्य नहीं है चैंटिंग करने का। और या तो फिर ये नहीं कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए या भगवान में लीन हो जाऊं या जो पांच प्रकार की मुक्तियां हैं वो मुझे मिले, नहीं। नाम का फल क्या है कि हमारा जो हृदय है हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित हो जाए, ये उद्देश्य है। उन्होंने कहा ये दो चीजें तो बाय प्रोडक्ट है इस फल की, कि मुक्ति मिलना और पापों का नाश होना, ये तो नाम के लिए तो बहुत ये है। फिर हरिदास ठाकुर ने उसके लिए उदाहरण दिया, कहते कि सूर्योदय उदय न है ते आरंभे तमेर हय क्षय। ऐसे कि सूर्योदय उदय न है ते आरंभे तमेर हय क्षय, मतलब सूर्योदय पूरी तरह से उगने से पहले ही अंधकार क्या होता है? विनाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से ये जो पाप और मुक्ति है ये उसका ही बाय प्रोडक्ट है। मतलब केवल नामाभास, वो कहते हैं मुक्ति तुच्छ फल है नामाभास है ते। तो नाम के चांट करने के तीन स्टेप्स हैं। एक पहला क्या है? नाम अपराध, अपराधयुक्त चांटिंग। तो जितना अपराधयुक्त चांटिंग का रिजल्ट क्या है? आपकी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति हो जाओगी। जो भी स्मरण करोगे, जैसे कुछ भी हम सोचो, मैं चांट कर रहा हूँ सोचो MP3 एप्पल आईपॉड, सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ति होगी। तो इसको कहते हैं ये अपराधयुक्त जप हो रहा है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। तो और दूसरे स्टेप है नामाभास, नाम का आभास होना, इससे अपराधों से मुक्त की स्टेज है नाम का आभास। तो उसमें नाम का आभास होता है, जैसे सूर्योदय होता है लेकिन सूर्य हमें नहीं दिखता जब, लेकिन पहले से ही प्रकाश होता है, तो सूर्योदय का वो आभास है। हम फिर एक्चुअल सूर्योदय होता है कि नहीं, फिर सूर्य को देखते हम बड़ा सा गोला है, तो उसी प्रकार से वो शुद्ध नाम है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुक्ति तो चफल है नामाभास है ते, कि मुक्ति तो ये तुच्छ फल है, ये तो नामाभास से ही प्राप्ति हो जाती है। इसे मुक्ति प्राप्त करना कोई बड़ी काम थोड़ा है, तो कोई नामाभास चांट करता है हरे नाम तो मुक्त हो जाता है। से मुक्ति भक्त नालय से कृष्ण चाहे देते। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि ऐसी जो मुक्ति है वो भक्त भी नहीं स्वीकार करता यदि कृष्ण भी देना चाहते हैं। कृष्ण भी देना चाहे देते हैं मुक्ति, क्योंकि कृष्ण के पास कई प्रकार के लोग जाते हैं, धनम देही जन्म देही फॉलोवर देही, धन दे दो जन दो सब दो, तो कृष्ण उनको तुरंत देते हैं। मुक्तिम देही वो भी दे देते, लेकिन कोई कहते भक्तिम देही, कृष्ण कहते लाइन में खड़े हो जाओ, दूसरी लाइन यहाँ खड़े हो जाओ, अभी इसके लिए वेट। क्योंकि भक्ति देंगे तो क्या होगा? कृष्ण कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे मायावादी कहते भगवान बनना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद कहा करते थे कि मायावादी तो भगवान बनना चाहते हैं, हम भगवान के ऊपर के बॉस बनना चाहते हैं। भक्त क्या है? भगवान का भी बॉस है जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय लव, प्रेम से भगवान। प्रेमे कृष्ण वश है प्रेमे तार भजी, तो कृष्ण ऐसे वश में नहीं होते चैतन्य चरण के, प्रेमे कृष्ण वश है। तो कृष्ण भक्त के प्रेम से, जिसके हृदय में कृष्ण के लिए बहुत अधिक प्रेम है, गाढ़ अनुराग है, उससे कृष्ण प्रेम वश में होते हैं, प्रेमे तारे भजे, लेकिन उनका भक्ति कैसे करना पड़ेगा, प्रेम पूर्वक। कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामो पयांति ते। उसके आगे वाली लाइन क्या है, जो व्यक्ति मेरे तेषाम सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वकम। तो कृष्ण ने वहां ही बता दिया, जो सतत युक्त है मेरी सेवा में और प्रेम पूर्वक मेरे भजन को करते हैं, मेरी सेवा को करते हैं, तो मैं भक्ति देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। कौन सी बुद्धि, ये न माम, कैसे आना है मेरी ओर, ये बुद्धि देते नहीं कि कुछ और करता है वो भक्त, हाँ कुछ नया इन्वेंशन नहीं। बुद्धि क्या है, कृष्ण की ओर जाने की बुद्धि। इस प्रकार से इन्होंने कहा कि तो भक्त ये मुक्तियां चाहते ही नहीं है, कृष्ण स्वयं देना चाहे फिर भी नहीं कहते नहीं नहीं, क्योंकि भक्त भक्ति करता है, मुक्ति दरवाजे में खड़ी रहती है हाथ जोड़ के कि प्लीज मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार। भक्त कहते हैं नहीं नहीं नहीं। तो इस प्रकार से भक्ति बहुत ही पावरफुल चीज है और बहुत शक्तिशाली है। और उन्होंने कहा कि ये मुक्ति तो बहुत सरलता से प्राप्त होती है। तो जैसे ही हरिदास ठाकुर ने इस बात को बोला तो वहां एक गोपाल चक्रवर्ती नाम का, चक्रवर्ती बंगाली सरनेम है, तो चक्रवर्ती नाम, गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति था जो मेन चीफ टैक्स कलेक्टर का काम करता था हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार के उस ऑफिस में, उन्होंने नौकरी में रखा था। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जैसे उसने हरिदास ठाकुर के मुख से ये बात सुनी तो वो बहुत भड़क गया, आग बबूला हो गया, चिल्लाने लगा। तो वो इतना उसके सौंदर्य का वर्णन किया है कृष्णदास कविराज ने, कहते कि उसके जो हाथ वगैरह कमल के समान थे, आंखें, बहुत सुंदर था वह व्यक्ति, कमल सदृश था, नव युवक था, गोरा था। हाँ, तो ऐसा वो सुंदर युवक खड़ा हो गया और वो हरिदास ठाकुर को बोलने लगा, भाव केरा सिद्धांत सुना पंडित रघन, ओ पंडितो, ए पंडित की सभाओं, हाँ देखो 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 ये भावुक व्यक्ति, इनका क्या सुन रहे, भावुक व्यक्ति का सिद्धांत, ये तो भावुक है, ये तो जानता ही नहीं है शास्त्रों को। तो कई बार ऐसे ही लोग सोचते हैं कि ये हरे कृष्णा वाले बस ड्रम पीटना जानते हैं, करताल तोड़ना जानते हैं और नाचना जानते हैं और ये गाना, इनको शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इनको क्या पता है शास्त्रों की व्याख्या, भगवद गीता, भागवतम। हाँ, तो इस प्रकार से बाहर के लोगों को इस प्रकार का कई बार वो है, क्या कहते हैं, इम्पैक्ट। तो भक्तों को शास्त्रों में भी प्रवीण होना चाहिए, जैसे हरिदास ठाकुर ऐसे नहीं थे कि नहीं विचार नाम ही कर रहा हूँ, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करूंगा। हरिदास ठाकुर भगवद गीता भागवतम का अध्ययन करते थे, हरिदास ठाकुर बलराम आचार्य के साथ बहुत गंभीरता से। तो जैसे इन्होंने कहा कि ये तो भावुक है ये हरिदास, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, तो वो विप्र जो ब्राह्मण था गोपाल चक्रवर्ती क्रोध में आकर बोला, विप्र कहे नामा बासे जदि मुक्ति नाय तबे तुम्हार नाक काटे कर अनिच्छाय। कहते कि नामा बासे, नाम के आभास से यदि मुक्ति नहीं होती है तबे तुम्हार, मैं आपका क्या करूंगा, नाक काट दूंगा, ये निश्चय पूर्वक है। इस प्रकार से किसी शुद्ध भक्त को इस प्रकार से वो गोपाल चक्रवर्ती बोलने लगा। तो हरिदास ठाकुर तो इतने विनम्र हैं, वैष्णव, वैष्णव का स्वभाव क्या है, उत्तम हैया अपना के माने अधम, वो उत्तम होता है लेकिन अपने आप को अधम सोचता है। तो जैसे ये क्रोध में बोला तो हरिदास ठाकुर के हृदय में कोई क्रोध या वो कुछ नहीं जागृत हुआ, जैसे हम आपकी कहे किसी को कि आपका नाक काट देता हो तो वो दूसरा ही चाकू लेके आके तुरंत नाक काट देगा। हाँ, लेकिन हरिदास ठाकुर की विनम्रता देखिए। तो हरिनाम लेने का फल, हरिनाम लेने से सारे जो देवताओं के गुण है वो भक्त के अंदर, जो 26 क्वालिटीज है वो भर जाती है या जागृत होती है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा आपको मेरे नाक काटने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही मेरा नाक काटूंगा। तो इतने विनम्र थे हरिदास ठाकुर। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ये गोपाल चक्रवर्ती ने कहा तो ये फल ही नहीं है, या इसे नहीं हुआ तो मैं नाक काटूंगा। तो इस प्रकार से जब वो बोला तो फिर पूरे सभा का जो वातावरण है चेंज हो गया। हर कोई, क्योंकि हरिदास ठाकुर का अपना एक रिस्पेक्ट था उन वैष्णवों के बीच में, और उनके प्रति एक सम्मान और आदर की भावना थी सारे वैष्णवों में, विशेष रूप से जो बलराम आचार्य हैं, बलराम आचार्य, फिर गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार। तो फिर उन सब ने कहा कि तो हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार से बोल के उस स्थान से चले गए। तो क्योंकि इन सबको सहन नहीं हुआ कि इतने महान वैष्णव का अपराध किया है, तो ये गोपाल चक्रवर्ती को छोड़ेंगे नहीं। तो हिरण्य मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार ने कहा तुम्हें आज नौकरी से ही निकाल दूंगा। तुरंत नौकरी से निकाल दिया उन्होंने, तुरंत उसी समय। जैसे हरिदास ठाकुर बाहर के निकल जाओ, अभी आज से काम में नहीं आना, तो उनको नौकरी से हटा दिया और वो चला गया। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये जो गोपाल चक्रवर्ती है, ये तर्क, क्योंकि आध्यात्मिक चीजों को या भगवत भक्ति के सिद्धांत को या भगवान को आप तर्क के द्वारा, तर्के कृष्ण तर्के बहुत दूर, कि तर्के बहुत, तर्क करते रहोगे पूरे जीवन भर तो कृष्ण बहुत दूर है, तो जीवन चले जाएंगे, कई सारे जीवन जाएंगे। कृष्ण तर्क के लिए, तर्क की वस्तु नहीं है। तर्के गोचर नहे नामेर महिमा, कि नाम की जो महिमा है वो आप तर्क करते रहोगे तो आप जान नहीं सकते भगवत नाम की महिमा, भगवत भक्ति की महिमा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हैं, और फिर वो बताते हैं कि फिर क्या रिजल्ट हुआ, क्या इस अपराध का फल क्या हो गया। तो किसी भी वैष्णव के प्रति हम अपराध करते हैं तो उसका फल हमें 3 दिन में मिलता है, 3 महीने में या 3 साल में, जितना स्ट्रांग वो वैष्णव होता है उसके अनुसार आपको तुरंत उसके रिएक्शंस मिलते हैं। तो लेकिन वैष्णव का स्वभाव क्या है, वो अपने आप को वैष्णव नहीं मानता। प्रॉब्लम में हमारे साथ यह है, हम सोचते हैं कि मैं महान वैष्णव हूँ, मैं भक्त हूँ। वैष्णव, क्योंकि जो वैष्णव अपने आप को मानता है, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अमित वैष्णव ये बुद्धि है ले अमानी की हवा अमी। कहते यदि मैं ये सोचने लगा कि मैं वैष्णव हूँ तो मेरे अंदर से अमानी का गुण है, ह्यूमिलिटी, वो नहीं आएगी कभी भी। तो वो कहते जो व्यक्ति अपने को ऐसा समझता है कि मैं वैष्णव हूँ, हाई तो निरयगामी, वो नरक में जाएगा। क्योंकि वैष्णव अपने आप को ये नहीं सोचता, वो तो सोचता है कि मैं तो वैष्णव बना ही ना हूं, ये वैष्णव जो उपाधि है या वैष्णवता है वो मुझसे कई किलोमीटर दूर है। तो हरिदास ठाकुर ने भी ऐसा कोई अपराध नहीं लिया था, लेकिन भगव भक्त अपराध नहीं स्वीकार करते। वो दयालु होते हैं, वो जानते हैं कि ये तो जो जीव है अज्ञान में है, लेकिन भगवान नहीं छोड़ते उस व्यक्ति को। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं 3 दिन भीतर से ये विप्र कुष्ठ है ला, अति उच्च नासा तार गलाया पड़ील गलिया पड़ील, कि 3 दिन के अंदर ही से विप्र कुष्ठ है ला, उस विप्र को लेप्रसी हो गई, कुष्ठ रोग हो गया। और उसकी जो कुष्ठ रोग में बॉडी के क्या होते हैं, अंग गलने लगते हैं। आप यहाँ नजदीक भी कुष्ठ देखो, लोग आते हैं बेगिंग करने के लिए, इधर जाते हैं अब लाजपत नगर की ओर, ब्रिज के आसपास उनका वो रहने का स्थान है, तब देखोगे कि सब उंगलियां हाथ वगैरह गिल गए हैं। तो इसका भी ऐसे हो गया, उच्च नासा, कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उसकी जो नाक ऐसी उभरी होती है, जो बहुत सुंदर होती है नाक, ऐसी बड़ी नाक और सुंदरता, तो नाक क्या हो गई, गल गई। जो हरिदास ठाकुर की नाक को काटने के लिए निकला था उसकी नाक गल जाती है। तो इस प्रकार से अपराध नहीं लिया था हरिदास ठाकुर ने। तो कृष्णदास कविराज वैष्णव के इसका वर्णन करते हैं, स्वभाव का, भक्त स्वभाव अज्ञा दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहित ना पारे। कृष्ण का स्वभाव क्या है, भक्त निंदा सहित ना पारे, कि भगवान कि जो भक्त है वो उन दोषों को तो स्वीकार करते है, ढक देते, सोचते ये तो अज्ञानी है, लेकिन कृष्ण उसको सहन नहीं करते, विशेष रूप से भक्तों की निंदा। इस प्रकार से ये महान शिक्षा इस हरिदास ठाकुर से हमें मिलती है कि किस प्रकार से व्यक्ति को सावधान होना चाहिए वैष्णव के प्रति व्यवहार करने में। तो वैष्णव के प्रति इस प्रकार के अपराधों से हमें बचना चाहिए, विशेष रूप से मानसिक अपराध। फिर उस यदि हम मन में उनके प्रति अपराध करते हैं, मन हमारा उनके दोषों को ढूंढता है और कई चीजों करता है। तो एनवी का लक्षण क्या है? फॉल्ट फाइंडिंग। एनवी है या द्वेष है तो कैसे पता करें? फॉल्ट फाइंडिंग का नेचर, दोष देखने की प्रवृत्ति आती है उस भक्त के अंदर। तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं कि हमें सावधान होना चाहिए मानसिक अपराध से भी, और यदि मन में हम किसी वैष्णव के प्रति अपराध की भावना रखते हैं तो वो मन में जो विचार है चाहे हम ना प्रकट करें, लेकिन एक दिन वो क्या होगा? वाणी से आएगा और फिर हम चर्चा करने लगेंगे और निंदा करना शुरू करेंगे, और निंदा करने में हमें बहुत अधिक रस मिलेगा। जितना चांटिंग में और कीर्तन में आनंद नहीं आएगा, उतना किस में आनंद आएगा? निंदा करने में। और फिर निंदा करते रहेंगे और फिर उसका रिजल्ट एक दिन फिजिकल शरीर में वो आएगा। मन में अपराध करेंगे फिर वाणी में आएगा, वाणी से फिर एक दिन फिजिकल फाइट, वैष्णव को मारेंगे। जैसे नाक काटने के लिए निकले थे, क्या फिजिकल है? हाँ, ये तो सीधा ही लांग ही दिया उसने, सोच ही रहे थे मन में, फिर वाणी में आ गया डिस्कशन के बीच में, फिर पूरा फिजिकली तैयार हो गए। इस प्रकार से भक्त को इस चीज के लिए सावधान होना चाहिए कि इस प्रकार का जो अपराध की भावना है उससे मैं बचूं। और ये जो हरि नाम है जिसका मेन फल है कि कृष्ण के प्रति कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में उद्दीत करता है। तो हरिदास ठाकुर उस स्थान में रहे कुछ दिन, चांदपुर में बलराम आचार्य के संग में, और फिर आगे वहां से वो शांतिपुर आते हैं। शांतिपुर जहाँ श्रील अद्वैत आचार्य रहा करते थे, और फुलिया ग्राम में वो रहते हैं शांतिपुर में आकर। तो शांतिपुर में अद्वैत आचार्य से उनका बहुत घनिष्ठ संबंध स्थापित होता है, और अद्वैत आचार्य उनको एक कुटिया बना के देते हैं गंगा के किनारे, और उस कुटिया में वो रहते हैं। और अद्वैत आचार्य के साथ रोज जो हरिदास ठाकुर हैं श्रीमद् भागवतम की चर्चा किया करते थे, भगवद गीता की चर्चा किया करते थे, अलग अलग एंगल से उसको स्टडी करते थे, उनके अर्थों को समझते थे, और रोज अद्वैत आचार्य के घर में प्रसाद लेने के लिए जाया करते थे। और दोनों इतने आनंदित थे कि अपना सारा समय कृष्ण कथा में बिताते थे। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये जो अद्वैत आचार्य हैं नियमित रूप से उनको भोजन दिया करते थे हरिदास ठाकुर को, और हरिदास ठाकुर इतने विनम्र थे कि विनम्रता की कोई सीमा ही नहीं है हरिदास ठाकुर के जीवन में, क्योंकि नाम तो वही ले सकता है। सबसे पहले क्या है? त्रिनादपि सुनिचे, ये है फर्स्ट क्वालिटी। तो हरिदास ठाकुर के जीवन से देखते हैं कि क्यों उनके मुख में, उनकी जीवा में हरि नाम नाचता है। भक्तों के जीवा में जब हरि नाम लेते हैं हम, तो कृष्ण साक्षात जीवा में आकर नाचते हैं। तो एक भक्त ने जब ऐसे सुना तो उसने सोचा कृष्ण नाच रहे, तो वो क्या किया कि आईने के सामने गया और वो कहता था कृष्ण, और ऐसे चेक करता था अपनी जीवा निकाल के, का है दिख नहीं रहे नाचते हुए। तो उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, क्योंकि कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वात् नाम नामिना, कृष्ण का नाम और कृष्ण दोनों अभिन्न है। तो अद्वैत आचार्य के घर में वो प्रसाद लिया करते थे, और वो फुलिया ग्राम में वहां रहने लगे, और आज भी जाते हैं, शांतिपुर के पास ही है उनका वो स्थान, अद्वैत आचार्य का जो स्थान है। और फिर जो साल में जो श्राद्ध सेरेमनी आती है, तो अद्वैत आचार्य ने सबसे पहले, क्योंकि शांतिपुर में तो महान महान बड़े बड़े ब्राह्मण थे, लेकिन अद्वैत आचार्य ने क्या किया, सबसे पहले जो श्राद्ध पात्र हैं वो सबसे पहले हरिदास ठाकुर को दिया। तो ये शिक्षा देने के लिए कि केवा विप्र केवा न्यासी शूद्र के ने जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु है। तो जो वैष्णव बन गया है, जो कृष्ण तत्व को जानता है, वो सर्वोच्च है। तो हरिदास ठाकुर और उस समय सारे जो ब्राह्मण वगैरह हैं वो अगेंस्ट हो गए कि ये क्या है, एक म्लेच्छ है, एक यवन, क्योंकि हरिदास ठाकुर को तो मुस्लिम जाना जाता था, कि एक यवन को इस प्रकार का प्रथम आदर दे रहे हैं अद्वैत आचार्य, बल्कि सारे ब्राह्मणों के आचार्य हैं, मैन है, इनको क्या हो गया है। और ये भी कहा करते थे हरिदास ठाकुर कि ये उचित नहीं है मुझे पहला ये पात्र आपने देना, इतने महान महान ब्राह्मण हैं उनको दे देना चाहिए आपने। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं तुम्हें खाए ले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, कि आप खाने से करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन देने के समान है। ये तो बोले श्राद्ध पात्र कराइल भोजन, तो ये कहकर उन्होंने वो श्राद्ध पात्र सबसे पहले उनको दिया। तो इस प्रकार से और भी कई सोर्स है जहाँ ये इस कथा का वर्णन आता है कि सारे ब्राह्मण बहुत कुपित हो गए और उन्होंने वहां खाने से इनकार कर दिया। और फिर उन्होंने कहा हम नहीं खाएंगे, तो फिर अद्वैत आचार्य ने उनको ग्रेन्स दे दिए, उनको इतना गर्व और घमंड हो गया था, ग्रेन्स दे दिए और वो लोग चले गए। तो वो जाते हैं ब्राह्मण अपने घरों में कि हम अपना कुकिंग करके खाएंगे, तो सब इतना आंधी और तूफान आता है कि पूरे उस एरिया में किसी के घर में फायर नहीं जलता, कोई कितना भी ट्राई करे तो आगे नहीं था एक या दो दिन के लिए। तो हर कोई परेशान हो जाता है, ब्राह्मण रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि क्या हो गया, हमने किस प्रकार का अपराध किया। तो फिर अद्वैत आचार्य के पास आते और अद्वैत आचार्य के पास से वो हरिदास ठाकुर के पास जाते कि किसी भी जगह फायर नहीं है, लेकिन हरिदास ठाकुर के कुटीर में फायर जल रही थी। तो फिर वो हरिदास ठाकुर ये जो इनके घर में अद्वैत आचार्य के घर में जो उन्होंने इतना भोजन बनाया था वो क्या कहेंगे उनको, एक दिन का जो भोजन है वो पड़ा था बासी, वो सब खाना पड़ा उन सबको। तो इस प्रकार से उन्होंने हरिदास ठाकुर के प्रति इस प्रकार की द्वेष की भावना रखी थी। तो इस लीला से भी अद्वैत आचार्य शिक्षा देते हैं और उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। तो अद्वैत आचार्य भी हरिदास ठाकुर का महिमा का वर्णन करते हैं और ये स्थापित करते हैं कि जिसने भी भगवत नाम का आश्रय लिया है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो जो वर्ण और आश्रम से परे है वो वैष्णव के धरातल पर आता है। तो ऐसा हरिदास ठाकुर का अलौकिक चरित्र है, जिनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी और जिन घटनाओं से या जिन लीलाओं से हम कई प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने पहले सुना था कि किस प्रकार से वो वेश्या आए, लेकिन अभी जब यहाँ आए वो फुलिया ग्राम में, तो अभी तो वो उस गुफा में उनके कुटी में रहते थे। तो एक दिन रात को शाम के समय और गंगा के किनारे में रहते थे, तो चांदनी रात थी, चंद्रमा और चांदनी वगैरह आकाश में दिख रहे थे और उन्होंने अपने घर के सामने ही कुटिया के सामने या गुफा के सामने तुलसी महारानी को स्थापित किया था, तुलसी को रखा था। और फिर अचानक क्या होता है, इस इतनी इतनी अंधेरी रात में एक बहुत सुंदर एक युवती आती है और वो पीत वस्त्र उसने धारण किए थे और बहुत सुगंधित हवा बह रही थी और उसके शरीर से सुगंध निकल रही थी, उस लेडी के शरीर से, और उसके पांव से आभूषणों के झंकार हो रहे थे। और वो आते ही और इतनी सौंदर्यवान थे कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती, और आते ही उसने उस तुलसी देवी की परिक्रमा की और उस गुफा के या कुटिया के पास गई दरवाजे में और हरिदास ठाकुर को हाथ जोड़कर वचन कहने लगी, बोलने लगी। तो ये अब देखो तो भक्ति में हम लगते हैं तो माया देवी का ये जो टेस्टिंग है वो चलता रहता है। जैसे आप देखोगे कि आपको दूसरे देश में जाना है फ्लाइट से, तो आप कोई चीज नहीं ले जा सकते। जैसे विदेशों में कई इसमें कि आप फ्रूट्स नहीं ले जा सकते कि इंडिया में कई डिजीज हैं, उनके देश में एक फ्रूट भी गया तो फिर कई डिजीज हो सकती हैं, या ऐसी काफी चीजें हैं। तो उनका जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो पूरा चेक कर देता है आपको, तभी छोड़ता है। तो भगवान का कस्टम डिपार्टमेंट कौन है? माया देवी है। और वो आपको इतना चेक करेगी, इतना पूरा। अब जब अर्जुन कहते हैं पवित्रम परमम भगवान, आपको पवित्र करके ही छोड़ेगी। आप पूरे पवित्र हो जाओगे तो फिर जा सकते हो। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा आपको चॉकलेट खाने की भी डिजायर है तो फिर वापस आना पड़ेगा। एक मटेरियल डिजायर है मीन्स न्यू मटेरियल बॉडी, एक भौतिक इच्छा है तो वो हमारा नया भौतिक शरीर क्रिएट करती है। तो ये माया देवी यहाँ आती है और उनको क्या कहती है, जगतेर बंधु तुम्हें रूप गुणवान तव संग लागी मोर ये था के प्रयान की। हे हरिदास ठाकुर, तुम तो बहुत सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो, और मैं यहाँ आये हो केवल आपका संग के लिए। मोर अंगीकार कर है या सदाय दिने दया करे ये साधु स्वभाव है। कहते कि आप बहुत दयालु हो, मुझे अंगीकार करो, क्योंकि मैंने सुना है साधु का स्वभाव क्या है, जो दीन है उसके ऊपर दया करना। अभी देखो ये माता जी कह रही है साधु को कि आप बहुत दयालु हो, प्लीज दया करो और मेरी इच्छा पूर्ति करो कि मुझे आपके संग की कामना है। हरिदास ठाकुर को एत बलि नाना भाव कर ए प्रकाश, नाना भाव अपनी बॉडी को हिलाते डुलाते हुए हरिदास ठाकुर को आकर्षित करना चाहती है। हाँ, ये जो माता जी है, जहार दर्शने मुनिर हय धैर्य नाश। तो यहाँ कृष्णदास गुरुराज कहते हैं कि जहार दर्शने कि उसने अपने अंगों को इस प्रकार से हिलाया डुलाया। जैसे कपिल देव की शिक्षा में कपिल अपनी माता को शिक्षा दे रहे थे भागवतम के तीसरे स्कंध में वर्णन आता है कि जो स्त्री है वो इतनी शक्तिशाली है कि अपनी एक भ्रुकुटी हिलने मात्र से बड़े बड़े राजा लोग गिर जाते हैं, इतना शक्ति होता है। आप देखो तो ये तो पूरे कई अंगों को हिला रही थी, तो हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उन्होंने नाना भाव नाना प्रकार के अपने शरीर की भाव भंगिमाएं प्रकट की। जहार दर्शने है मुनिर धैर्य नाश, मुनि जो मन को लगाता है, उद्वेलित करता है एक टॉपिक को सोचने के लिए अलग अलग एंगल से, उसको मुनि कहा जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े मुनि भी उनके धैर्य का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, विचलित हो जाएगा। आप देखो विश्वामित्र, विश्वामित्र 60,000 साल तक पूरा कठोर तपस्या, एक आ गई कौन आ गई मेनका और उसने अपने नुपुरों की ध्वनि कर दी तो क्या हो रहा है, एक आ गई से ओपन कर दी थोड़ा सा। देखो ये इंद्रिया कितनी शक्तिशाली है कि बड़े बड़े मुनियों का धैर्य नाश हो जाता है। तो उसने जैसे ही एक झंकार कर दिया अपने पायल की तो सारा हृदय बिल्कुल कोमल हो गया और उसने कहा हरे कृष्ण हरी बोल, उठ गए भाग गए मेनका के साथ और शकुंतला का जन्म होता है। सौगुरी मुनि, सौगुरी मुनि का आप सुनते हो कृष्णा बुक में, हाँ, कि सौगुरी मुनि ने क्या किया, उन्होंने सोचा मेरे तो बहुत भजन तपस्या करनी है और ध्यान करना है और मैं देख रहा हूँ ऊपर तो सब माया ही माया है, पृथ्वी में सब जगह लोग माताजी प्रभु जी, माताजी प्रभु जी नहीं मतलब स्त्री या पुरुष, और बहुत दिक्कतें हैं, मैं एकांत में जाकर भजन करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। हाँ, तो उनके उस फर्स्ट टाइम से तो कई चीजें शिक्षा हमें मिलती है कि भक्तों के संग में जाके बालक से भजन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं मैं पानी के अंदर जाके ध्यान लगाता हूँ। तो सौवरी मुनि पानी के अंदर गए और ध्यान लगा रहे थे तो अचानक उन्होंने अपनी थोड़ी सी आंखें खोली, सामने देखा कि दो मछली आपस में संग कर रही है। ये देखने मात्र से इनके हृदय में वो डिजायर आई और वो पानी के अंदर थे, नीचे वो अपने आप ऊपर आ गए ऐसे के ऐसे और फिर बाहर चलने लगे। और फिर जाकर 50 राजकुमारियों से शादी किया उन्होंने, 50 राजकुमारियों से भोग किया। हाँ, तो ये सिचुएशन है। तो कहते कि ये स्त्री की जो ये भाव भंगिमाएं हैं जो इसने प्रकट किए थे हरिदास ठाकुर के सामने, कि बड़े बड़े मुनियों का भी धैर्य नाश हो जाता है, और ये प्रैक्टिकल है, और हमें भी भक्तों को भी जब प्रीचिंग में जाते हैं या फिर कई सेवाओं में होते हैं तो बड़ा सावधान होना चाहिए। कई भक्तों का एक्सपीरियंस है, एक भक्त कॉलेज प्रीचिंग के लिए गए थे तो एक भक्त प्रवचन दे रहे थे अंदर, और दो भक्त अपना टेबल लगा के किताबें बेच रहे थे। तो कॉलेज का, कॉलेज मीन्स जो फिल्मों में देखते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जहाँ किया जाता है वो कॉलेज है। तो कॉलेज में तो जितने कपड़े कम पहने जाए और ये सब चीजें होती हैं, तो ये बेचारे भक्त किताब वितरण कर रहे थे, और तो एक भक्त तो केवल जैसे दो तीन माताएं आई और कृष्णा बुक निकाला और इस प्रकार से दिखाया, और उसने क्या कैसे उपरीच करता था, नीचे से ऊपर तक माता जी को देखता, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड ऐसी सिचुएशन है। तो ये जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था उसके बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो तमाल कृष्ण महाराज ने एक पार्टी बनाई थी प्रभुपाद के समय जिसका नाम था राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी। तो वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो मैड रहते थे वो ब्रह्मचारी। तो एक बार लेकिन उनमें उनके उस पार्टी में एक ब्रह्मचारी था, वो केवल माताओं को ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था। तो एक दिन महाराज क्लास दे रहे थे तमाल कृष्ण महाराज, तो एक भक्त ने पूछा, महाराज प्रश्न क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा पूछो। तो महाराज कि कोई व्यक्ति या कोई जो भक्त है ब्रह्मचारी केवल माताओं को ही किताब वितरण करता है तो क्या हो जाएगा? तो महाराज कहते सिंपल है, एक ब्रह्मचारी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कहते कि इतना ये है, स्ट्रांग है कि बड़े बड़े मुनि का भी धैर्य नाश हो जाएगा। और इतना ही नहीं, शिव जी ब्रह्मा जी, अब देखो ब्रह्मा जी अपने पुत्री के पीछे भागते हैं, हिरण का धावत थर्ड कैंटो में आता है भागवतम के, कि वो भी धैर्य नहीं धारण कर सके अपने पुत्री की सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी भागे। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी को क्या हो गया, हम कुछ अपराध कर सकते हैं उनके प्रति, लेकिन ये क्या है, हमारे लिए शिक्षा है आने वाले जो साधक है उनके लिए। इवन शिव जी कहते भगवान आपकी माया को मैं देखना चाहता हूँ, आपने जो मोहिनी रूप प्रकट किया था ना, मैंने सुना बहुत सुंदर था, मैंने देखा ना, मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि तो विष पी रहे थे वो जब समुद्र मंथन हो रहा था, कृष्ण कहते कि मत देखो मत देखो। उनको सावधान कर रहे थे, मत देखो, नहीं 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 नहीं, मुझे देखना ही है। फिर दिखाया तो फिर भागवतम के छठे या कौन से स्कंद में तो पूरे कई अध्याय हैं, देखने के बाद क्या हालत हो गई उनकी। तो कभी ब्रह्मचारी क्लासेस हम चर्चा करेंगे तो उन सब चीजों से बहुत शिक्षा, प्रभुपाद ने तो बहुत स्ट्रांग तात्पर्य लिखे है। इवन नारद भी कृष्ण को कहते, कृष्ण मैं तो आपका बहुत प्रचार करते रहता हूँ, हर समय नाम लेता हूँ, नारद मुनि बाजाय बिना राधिका रमन नामे, हर समय में हरे नाम का उच्चारण करता। लेकिन एक दिन वो दोनों जा रहे थे, कहते मैं आपका माया को देखना चाहता हूँ। भगवान कहते कि मत देखो, ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो नहीं नहीं नहीं, मैं इतना सेवा करता हूँ, मुझे दिखाइए दिखाइए। तो वो दिखाते और फिर अनुभव करते हैं नारद जी की वास्तव में कितना शक्तिशाली है जो भगवान का। तो माया का जो फॉर्म किसी को देखना है, कपिल देव तीसरे स्कंद में कहते हैं, जैसे हम कहते हैं माया माया माया, तो फिर ये माया चीज है कहाँ, क्या चीज है माया, कभी देखा है किसी ने? नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि माया मीन्स जिस समय आप कृष्ण को भूले वो समय क्या है, माया में है। तो एक भक्त प्रभुपाद के पास जाता है और कहता है, प्रभुपाद मैं कभी कभी माया में होता हूँ, तो प्रभुपाद कहते तुम तुम कभी कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हो और ज्यादातर माया में होते हो। इस प्रकार से माया का जो ज्वलंत रूप है, भागवत में कपिल देव कहते हैं देखना चाहते हो तो वो स्त्री है। हाँ, कौन है? स्त्री। वो फॉर्म है, माया का रूप है। हाँ, तो जहाँ साक्षात वो आई और वो उनको दिखाने चाहिए, तो मुनिर है धैर्य ना, जिसके ऊपर तो शास्त्र भरे पड़े हैं, कैसे कैसे मुनियों का धैर्य नाश हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ वो आती है और हरिदास ठाकुर को विचलित करना चाहती है अपनी भाव भंगिमाओं से। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि मैं तो दीक्षित हो गया हूँ संख्या पूर्वक नाम जप करने में। मैंने दीक्षा ली है किस चीज की? संख्या पूर्वक नाम जप करने की। जावत कीर्तन समाप्त न है ना करी अन्य काम। जब तक मेरा नाम समाप्त नहीं होगा तब तक अन्य काम मैं नहीं करता। कीर्तन समाप्त है ले है दीक्षा रविश्राम। जैसे मेरा नाम समाप्त हो जाएगा फिर आराम से आपसे डील करूंगा, बात करूंगा। तो तब तक क्या करो तुम? सेम फॉर्मूला। हाँ, चाहे मटेरियल डिजायर्स आए, माया तंग करे, कुछ भी करे, लेकिन हमें अपना हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि यही एक चीज है जो फेविकॉल से भी बहुत अधिक मजबूत है, जो आपको ऐसी छिपा करके रखेंगे कृष्ण से कि आप निकलना भी चाहोगे तो नहीं आप दूर हो सकते। जैसे लॉर्ड चैतन्य कृष्ण का नाम लेना बंद करना चाहते थे, तो लेकिन उनके मुख से नाम निकलता ही रहता था। और महाप्रभु अपने जीवा को क्या कर रहे हैं? दांतों के बीच में रखते थे पकड़ के, क्योंकि उनकी जीवा रुकती नहीं थी कृष्ण 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 भगवान के नाम लेने से। इसलिए महाप्रभु पकड़ के रखते थे कि ये जीव को हमें तो चलानी पड़ती, हमारा पूरा उल्टा है परिवर्तित। तो फिर वो हरिदास ठाकुर कहते कि आप आओ 3 दिन के बाद फिर से आओ। तो उसी प्रकार से वो आए और वो आती है और वो कहती है तीन दिन वंशिला मा करे आश्वासन, रात्रि दिने नहे तुमार नाम समापन। कि 3 दिन से आप तो आश्वासन ही देते जा रहे हो जैसे नेता लोग देते हैं। हाँ, जैसे वे इलेक्शंस होते हैं तो नेता आप हमें वोट दे दो हम आपको इंद्रिय तृप्ति दे देंगे, तो कई आश्वासन देते हैं और बेचारे लोग उनको वोट देते हैं और वो खुद की इंद्रिय तृप्ति करते हैं और इनकी इंद्रिय तृप्ति होती नहीं। फिर कहते नहीं इस 5 साल के नहीं, अगले 5 साल के लिए फिर दूसरे को हम वोट देंगे। तो ये कहते कि आपने तो मुझे केवल आश्वासन दिया, हाँ, लेकिन मुझे वंचित कर दिया। और मैं जब भी आती हूँ 3 दिन 3 रात्र हो गए, तुम्हारा तो जप खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ, वो बोलने लगे हरिदास ठाकुर कहे आमी की करीमू, मैं क्या करूँ। इस प्रकार से इतने ये है ना विनम्र और लगे रहे आपने उस सेवा में। नियम करी याचिता के मने छाड़े मुँह, कि मैंने तो नियम कर लिया है अब ये छोड़ नहीं सकता। तो जैसे कई भक्त बहुत ये होते हैं जप करने का उनका नियम, बैठ के जप करेंगे और मॉर्निंग प्रोग्राम, जैसे जिता मित्र प्रभु है हमारे, उनको आज तक मैंने नहीं देखा 10 साल से कि उन्होंने एक मंगल आरती मिस किए हैं। हाँ, कभी नहीं देख सकते आप उनको कि मंगल आरती मिस कर दी, चाहे कितने बीमार हो कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका नियम क्या है? मंगल आरती में आना ही आना, चाहे वहां बैठे रहना या खड़े होना कुछ भी हो जाए। हाँ, वो पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर नियम नहीं छोड़ूंगा। तो फिर वह जो स्त्री है वो अपना असली रूप प्रकट करती है। तो वो कहती है कि मैं साक्षात माया देवी हूँ। माया देवी है तो कहते मैं साक्षात माया देवी हूँ और मैं आई थी आपकी परीक्षा लेने के लिए। और वो कहती है कि ब्रह्मादि जीव रामी सबारे मोहिला, कहते कि ब्रह्मा और आदि जीव, ब्रह्मा और जितने भी जीव है इस संसार में सबको मैंने मोहित किया है, चाहे शिव जी हो कोई भी हो, जीव कोई भी नहीं बचा है। एकला तो मारे मोहित नारी, लेकिन एकला आप अकेले ऐसे निकले हो आज तक, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में पहले आ जाता ठाकुर का नाम होना चाहिए। हमें इस बात को वहां ये करना चाहिए एप्लीकेशन कि हरिदास ठाकुर माया देवी कहते कि सबको मोहित किया। और आप देखो संसार में कौन मोहित नहीं है माया देवी के स्पॉन से, कोई अट्रैक्ट कौन ऐसा है जो बचा है, कौन ऐसा है जो लुप्त नहीं हुआ है। तो लेकिन वो कहते एकला तो हमारे मोहित नारे लो, देखिए आपको मैं मोहित नहीं कर सकी। इस प्रकार से माया देवी उनको शरण ग्रहण करती है हरिदास ठाकुर की और कहती है कि मैंने तो शिवजी से राम नाम की दीक्षा ली है, लेकिन मुझे क्या चाहिए अभी, कृष्ण नाम की दीक्षा चाहिए। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि माया दासी प्रेम मांगे इथे के विस्मय, इसमें क्या आश्चर्य है, माया दासी प्रेम मांग रही है हरिदास ठाकुर से। हाँ तो ये ऐसे हरिदास ठाकुर है ग्लोरियस। हाँ तो हरिदास ठाकुर की कृपा किसी जीव पर हो जाए तो एक भौतिक माया में तो गिरने की संभावना ही नहीं है। और हरिदास ठाकुर दिखाते हैं कि किस प्रकार से एक साधक को हरि नाम को पकड़ के रखना चाहिए। जैसे हरि नाम ढीला हो जाता है, खत्म कम हो जाता है, जप नहीं करते तो फिर सब कुछ हिलने लगता है। प्रभुपाद कहते थे कि स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करते हम 99% चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का ऐसा अद्भुत जीवन है कि साक्षात माया देवी उनसे कृष्ण प्रेम की याचना करती है और माया देवी को भी वो दीक्षा देते हैं, वो भी हरे कृष्ण आंदोलन में भाग लेती है। तो वो भी हरि नाम का उच्चारण करती है। तो इस प्रकार से माया देवी भी हरिदास ठाकुर की शरण ग्रहण करती है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती है और बहुत खुश है अभी। तो माया देवी हमें हर समय हमारी परीक्षा लेती रहती है, टेस्ट करती है किसी ना किसी प्रकार से, चाहे वो कुछ छोटा सा कुछ ना कुछ बहाना हमें दे ही देती है। एक्सक्यूज प्रभु जी है कि नहीं, माया देवी ऐसा पूछती है प्रभु जी को तो प्रभु जी का जीवन खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम हरे नाम का आश्रय नहीं लेते सिंसियरली तो फिर हमारी बचने की कोई संभावना नहीं है। तो हरिदास ठाकुर का जीवन चरित्र अद्भुत है, अलौकिक है। जिन्होंने अपने जीवन चरित्र से इस बात की शिक्षा दी है कि किस प्रकार से व्यक्ति को हरे नाम को पकड़ के रखना चाहिए। श्री हरिदास ठाकुर के, तो आगे हम हरिदास ठाकुर के बारे में और सुनेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने कितने कष्ट सहे, हरे नाम को उन्होंने छोड़ा नहीं और फिर कैसे उन्होंने इस हरे नाम को लेते रहे और कैसे महाप्रभु की कृपा उनको अपने अंतिम समय में प्राप्त हुई। हरिदास ठाकुर महाशय के, श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे
जय।
वैष्णव वृंद की जय। बताए
तो जैसे आपने बताया कि जो नाम अपराध है उससे भौतिक इच्छाएं बुरी होती हैं, तो जब भौतिक इच्छाएं बुरी होती रहेंगी तो बढ़ती भी रहेंगी, फिर नामाभास पे कैसे जाएंगे हम?
तो उन इच्छाओं को वेट कराते रहे हम, जैसे उस वेश्या के समान है वो भौतिक इच्छाएं, और भक्तों के संग में तुलसी और प्रेयर फुल चैंटिंग हम करते हैं प्रार्थना करके, तो फिर वो भौतिक इच्छाओं से हम मुक्त होने लगते हैं। तो कोई ना कोई इच्छा तो रहेंगी, और हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास, ये इच्छा, हे कृष्ण मुझे, हे नाम प्रभु आपके सेवकों का सेवक मुझे बना दो। हाँ जैसे राजा प्रताप रुद्र थे, उन्होंने लॉर्ड चैतन्य की कृपा प्राप्त की, बहुत अद्भुत वो पास टाइम है। तो लेकिन लॉर्ड चैतन्य ने उनको पहचाना नहीं, जब राजा एक भक्त की वेश धारण करके गया था और महाप्रभु का चरण मसाज कर रहा था और श्लोका उच्चारण कर रहा था भागवतम के, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। तो महाप्रभु बहुत खुश होते हैं, भूरिदा भूरिदा कि सबसे बड़ा दानी व्यक्ति कौन है जो कृष्ण कथा लोगों को बांटता है, देता है कृष्ण कथा। तो लॉर्ड चैतन्य उनको आलिंगन करते हैं और कहते कि तुम कौन हो। महाप्रभु भाव आवेश में थे, वो जानते थे राजा है, समझ गए थे तो, लेकिन शिक्षा देने के लिए। तो कहते तुम कौन हो, मैं आपके दासों का दास। तो हम मोर यही अभिलाष विलास कुंज दियो वास सेवा अधिकार दिए। तो सेवा का अधिकार, तो सेवा कौन करता है जो दास होता है, मास्टर करता है क्या सेवा? कृष्ण ऐसे मास्टर नहीं है, वो अपने दासों के भी दास है। तो ये इच्छाएं तो रहेंगी, लेकिन इन भौतिक इच्छाओं को हमें आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित करना चाहिए कि हे कृष्ण भक्तों का संग प्रदान करो, हरे नाम में मेरा रुचि हो जाए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक इच्छाओं को हमें, क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे, श्रवण करेंगे अच्छे से, शास्त्रों को नियमित रूप से पढ़ेंगे, तो आध्यात्मिक इच्छाएं विकसित होने लगेगी। तो ये डिजीज है, बीमारी है इच्छा, क्योंकि जब शराबी के संग में मैं रहूं तो वैसे ही इच्छा होगी मुझे पीने की शराब। तो वैसे ही है, आप अपने आप को प्रभुपाद और वैष्णव से श्रवण करना, अच्छी तरह से पढ़ना, इन सब में इन्वॉल्व करते हो तो फिर स्पिरिचुअल डिजायर उत्पन्न होती है, आध्यात्मिक इच्छाएं, फिर भौतिक इच्छाएं चली जाएंगी। और हमेशा भगवान के पास ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद कहा करते थे कि हे कृष्णा मुझे ऐसी इच्छा दो कि अच्छी इच्छाएं प्रकट हो जाए। क्या ऐसी इच्छाएं दो कि मेरे हृदय में अच्छी कि सेवा से संबंधित डिजायर प्रकट हो जाए, ये प्रार्थना करनी चाहिए प्रभुपाद कहा करते थे एक भक्त को। इस प्रकार से पूछिए। तो हो सकती है, मतलब लाइट ना ले उन प्रेयर्स को जैसे, और प्रेयर्स तो जो वैष्णव आचार्यों ने की है उनको हम दोहराए करें, जैसे आई नंद तनुज किं करम, तो इसलिए मीनिंग उनका ध्यान रखे हम और सुने अच्छे से, तो फिर वो ये जो मैकेनिकल जो विधि आ जाती है हमारे प्रार्थनाओं में वो कम हो जाएगी। लेकिन कई बार हम वो ड्यूटी समझ के करते हैं प्रेयर, अभी जब करना है उससे पहले ड्यूटी है, प्रार्थना करनी है, नीड। प्रार्थना कौन करता है? प्रकृष्ट रूपे ने जो आर्त है, आर्त में दुखी है, वही प्रार्थना करता है। गजेंद्र का पाव पकड़ा था मगरमच्छ ने, वो प्रार्थना करने लगे, अखिलते ऐसे कुछ है वो श्लोक देव समथिंग। तो ऐसा है, क्योंकि अभी प्रार्थना क्यों नहीं होती, क्योंकि महसूस ही नहीं होता कुछ कष्ट ही है मेरे जीवन में। अभी तो एसी ऑन होगा, जपा में आप बैठोगे तो फिर लगेगा नहीं एसी में चैंटिंग हो रहा है। कंडीशन सोल एयर कंडीशन में जब कर रहा है और कंडीशन हो रहा है। तो ये सिचुएशन है, तो क्या ये होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मेरा भी पाव पकड़ा हुआ है गजेंद्र के समान, माया देवी ने भौतिक इच्छा में कष्ट प्राप्त कर रहा हूँ। तो ये प्रार्थना में जो ये अनुभव करता है कि जो याचना कर रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ, जिस प्रकार से आप जाओ जब आप गाड़ी में जाते हो तो कितने भिखारी मांगते हैं, उनकी प्रार्थनाएं कोई ऐसी मैकेनिकल नहीं होती। कुछ तो ट्रेंड भिखारी होते हैं और हम भी एजुकेटेड भिखारी हैं, तो उसके लिए यह अनुभव होना चाहिए, ये जानना चाहिए और ये श्रवण से डेवलप होगा कि मैं वास्तव में जगत में कष्ट में हूँ। इसलिए तो सुबह उठते उठते आपको याद दिलाया जाता है कि आप जल रहे हो, तप रहे हो, संसार दावा, पहला शब्द हम सुनते हैं संसार दावा, मतलब क्या है कि ये चीज भूलते हैं। और ये जिसको याद रहेगा ना कि मैं जल रहा हूँ, वो 90 या 100 के स्पीड से भागेगा आध्यात्मिक जीवन में, तीव्रता से भागेगा। तो ये है, लेकिन यही भूल गए हैं। इसलिए नॉलेज दो, एक धर्म का भी ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को और एक अधर्म का भी ज्ञान, दोनों चीजों का पता। तो भौतिक जगत के दुखालय अशाश्वतम है, इस बात का पूरे पूरा अनुभव नॉलेज होना चाहिए। और श्रवण के द्वारा ये हम अनुभव करते हैं अच्छी तरह से, और जब हम खुद ही बॉयल होते हैं, जैसे अभी तो बॉयल नहीं हो रहे यहाँ, लेकिन जब बाहर जाते, जब नौकरी करते थे या फिर भौतिक जीवन में रहते थे, तो अनुभव किया है उस गर्मी को हमने, उस तप्तता को। जैसे मैं कल गाजियाबाद गया था भागवतम क्लास देने, तो मुझे संसार दावा प्रेयर अच्छी तरह से स्मरण हुआ है। मैं यहाँ से गया, अच्छा सा मंदिर का कार तो बैठ के गए पदमपुरी प्रभु में, हम तो माधवेंद्रपुरी का जीवन चरित्र सुनाना था, तो मैं पढ़ते हुए गाते हुए चैतन्य चरितमृत गए, पहुंचे वहाँ, तो वहाँ सुनाया, श्रवण किया और प्रसाद पाया, बहुत अच्छा। और तब तक सूर्य पूरा ऊपर तक आ गया था और इतना गर्मी हो रहा था कि आते समय इतना ट्रैफिक कि हमें एक एक स्थान में आधा आधा घंटा रुकना पड़ा, और इतना कि वो गाड़ी में जल रहे थे और हम दोनों को एक ही लाइन याद आ रही थी, संसार दावा। और फिर आगे की लाइन याद आई, त्राणाय कारुण्य घना घनत्व मुझे, जब मैं जैसे आश्रम के बिल्कुल गार्ड बैठते वहां से अंदर आया तो ठंडी हवा, हाँ को नीचे उतरते आपको गुरुदेव बारिश, उस आग तो जलेगी बुझेगी नहीं दावाग्नि, लेकिन गुरु क्या करते हैं, घना घनत्व त्राणाय कारुण्य घना घनत्व, बारिश करते हैं। तो दावाग्नि अपने अग्निशामक दल है, उसकी गाड़ियां जाकर दावाग्नि को नहीं आप बुझा सकते हो जो जंगल में लगी हुई आग है, उसके लिए बारिश ही चाहिए। तो उसी प्रकार से ये भौतिक आग नहीं बुझेगी किसी चीज से, तो गुरु जो कृष्ण की कृपा को आगे दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वास्तव में गुरु की कृपा है, ब्रह्मचर्य आश्रम घुसते ही ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, और मैंने कहा सारा जो दावाग्नि अभी शांत हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आया और रूम में घुसा तो पूरी तरह से शांत हो गई थी, और फिर केशवारी प्रभु के रूम से ठंडा पानी लेके और पी लिया। तो यह है दावाग्नि का शमन, तो ये अनुभव करना पड़ेगा हमें, सोचना होगा। और ये याद दिलाता है, ये बॉडी हमें याद दिलाता है, चाहे एसी में बैठो या जहां भी बैठो, ये शरीर आपको याद दिलाएगा क्या कि आप जल रहे हो, कभी शरीर में कुछ हो रहा है, कभी कान ठीक है तो नाक में प्रॉब्लम हो रहा है, नाक ठीक है तो गले में प्रॉब्लम है, गला ठीक तो पेट में प्रॉब्लम है, पेट ठीक तो पाँव में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चलता है। लेकिन हम सोचते नहीं इसको मैं ठीक करूंगा, उसके लिए पीछे लगे रहते, मतलब ये नहीं कि ठीक नहीं करना है, ठीक करना है, क्योंकि ये बॉडी कृष्ण की सेवा के लिए दिया गया है हमें भगवान ने। तो लेकिन ये रिमाइंड करता है हमें, शरीर क्या करता है, रिमाइंड करता है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, वंडरफुल टेम्पल है, किस चीजों का, व्याधियों का, स्लोगन ही लिखना चाहिए यार। तो इस प्रकार से है, तब वो प्रार्थना का जो मूड है वो बना रहेगा, क्योंकि एसी में बैठा है भक्त और सब सुविधा और हरे कृष्णा क्या उसको दुखों का आनंद हो, क्या प्रार्थना करेगा। हाँ प्रार्थना होगी जब आप जैसे किसी बंदर के पूछ में आग लगा दो और वो कैसे भागेगा, क्योंकि पता है कष्ट हो रहा है। तो वैसे हमारे साथ नहीं है सिचुएशन, लेकिन ऐसे नहीं कि हम दुख लेते रहे अब तक मुझे अनुभव हो कि सही में दावाग्नि है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि मैं वहां से नहीं उतरूंगा, यहाँ से जंप लगाऊंगा, यहाँ के स्टेडियम से नहीं उतरूंगा, कि मुझे अनुभव करना है कि जगत दुखालय में है, जंप लगाऊंगा, ऐसे नहीं। हाँ बुद्धिमान व्यक्ति सुन के सीखता है, उपदेश अमृत में आप पढ़ते हैं ना, जो चोर बुद्धिमान व्यक्ति चोर को तो जाते रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होता है जेल में जाएगा पिटाई खाएगा, लेकिन बुद्धिमान केवल सुन के ही अनुभव करता है इस भौतिक जगत के दुखों को। और आचार्यों ने वर्णन किया है श्रीमद् भागवतम तो इन सब चीजों से भरा पड़ा है, द्रौपद के तात्पर्य, तो ये सुनना पड़ेगा अच्छी तरह से, चर्चा करनी पड़ेगी भौतिक जगत के दुखों की, वास्तव में दुखालय और अशाश्वतम, ये टू मेन क्वालिटीज है इस मटेरियल वर्ल्ड का। भगवान ने क्रिएट किया तो एक स्टैंप मार दिया, टक डब्बा, जैसे सिगरेट के ऊपर होता है, क्या सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, चाहे वो ब्रिस्टल कंपनी ने बनाया हो या किसी भी, तो वो अपना स्टैम्प लगाती, तो मटेरियल वर्ल्ड क्रिएटेड बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड कृष्णा, तो उन्होंने फिर अपना स्टैम्प ये प्रोडक्ट भेजा ना आगे, तो फिर ये प्रोडक्ट के ऊपर स्टैम्प भी लगे, जाने से आप एंटर करने से पहले देखो बाबा पढ़ के जाना अंदर दुखालय मस्जिद, फिर भी लोग घुस रहे हैं, जैसे सिगरेट के लिखा है फिर भी पी रहे, और कृष्ण ने यहाँ भी स्टैम्प लगा दिया दुखालय मस्जिद, फिर नहीं हम जाएंगे सुखालय हम शाश्वतम उसको बनाने के लिए पूरा प्रयास यही तो चल रहा है, गाड़ियां घूम रहे फ्लाईओवर बन रहे मेट्रो आ रहे, आप देखो कितना इतना बुरी सिचुएशन है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो रहे हैं और कितनी प्रकार की गाड़ियां आ रही हैं और कितना कष्ट है, ये सब किस चीज का प्रयास है, सुखालय गर्मी है हम उसको एसी से ठंडा कर देंगे, ठंडी है फिर हम उसको गर्मी, ये सब लगे हुए हैं लोग तो, लेकिन कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है बाहर, वो एक स्टोरी सुना होगा आपको, लेट हो रहे हैं ठीक है, मतलब वो अटके हुए हैं सुखालय दुखालय के चक्कर में, इधर ही रहना चाहते हैं, एक तो उसका स्टोरी सुना ना आपने रैट का, एक साइंटिस्ट ने एक डब्बा बनाया था जिसमें दो तीन वो थे क्या थे छेद, जिसमें एक से पानी गिरता था, एक से फूड, एक से पत्थर, तो रैट तो पहले डोर को जैसे वो टिक करता है ऑटोमेटिक था, तो खोला तो पानी हरी बोल स्नान हो रहा है शावर के नीचे, हाँ वो मिस्टर रैट आनंद ले रहे थे पानी का, आनंद के भाग भी रहे थे, फिर दूसरी भूख लग गई अभी, हाँ फिर गए तो वहाँ तो देखा जैसे टिक किया तो वो वहाँ से सारे उसका फूड गिरने लगा खाने लगा रैट, फिर आगे गया तो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ सर पे गिर रहे भागो तो भागा, तो फिर उसको अभी पता चल गया था फर्स्ट से पानी आ रहा है, सेकंड से क्या आ रहा था फूड, थर्ड से कंकड़ पत्थर आ रहे थे, तो वो समझ गया फिर फर्स्ट में जाता है, तो एक बार तो ठीक हो गया, लेकिन अभी वो साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक था वैज्ञानिक ने वो चेंज कर दिया, वो पत्थर की जगह वो पानी का लगा दिया और फूड की जगह पत्थर लगा दिया और ऐसे कर दिया, तो ये गया फूड के लिए तो देखा वहाँ फूड के लिए क्लिक किया तो पूरे पत्थर ही गिर रहे, भागा फिर इधर, इस प्रकार से सारा इसी में जीवन जा रहा है, और बल्कि फिर बाद में उसने दरवाजा ओपन कर दिया बड़ा कि यहाँ से भी जा सकते हैं आप निकल के बाहर आराम से जा रहे हो, फूड में आपको सब कुछ मिलेगा बिना कष्ट रहित जीवन, तो लेकिन वो उसी में अटका हुआ है, वो रैट इतना बड़ा दरवाजा खोल के रखा तो भी निकलने के लिए तैयार नहीं, वो उसी में पानी पत्थर फूड, फूड पत्थर पानी ऐसे इसी सिक्वेंस में, तो हमारी सिचुएशन भी भौतिक जगत में ऐसी है, हाँ सुखालय दुखालय शाश्वत अशाश्वत इसी में लगे हुए हैं, ठंडी गर्मी और फैसिलिटी क्रिएट करना करना, तो लेकिन पूरा दरवाजा खोल के रखा चैतन्य महाप्रभु ने और हरे कृष्ण महामंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन जाने के लिए तैयारी नहीं, हम नहीं जाना चाहते, हम वो चूहे की तरह उसी में अटके हुए हैं, इस प्रकार से लाइफ समय हो गया, श्रील प्रभुपाद के जय, गौर भक्त वृंद के जय, निताय गौर प्रेमानंद
हरि हरि बोल जय।